नाहुम अध्याय 3। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वो तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े खूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायन और लोथों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खाकर चलते हैं। ये सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहिन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, परमेश्वर निनवे के विनाश का कारण बता रहा है। जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी करवाऊंगा, और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, निनवे नाश हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहां से ढूंढ कर ले आए? आपको याद है ना कि निनवे नगर एक विशाल नगर था। भविष्यद्वक्ता योना के समय में निनवे नगर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए 3 दिन का समय लगता था। इस नगर की जनसंख्या लगभग 10 लाख थी। एक अत्यंत ही बड़ा नगर था निनवे, और उस पर परमेश्वर का न्याय प्रकोप आने को था। अशूरी मिटाए जाने पर थे, इसके आगे परमेश्वर कहता है, नाहुम अध्याय 3:8-13 तक, क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था? कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हो, यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वालों के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं, तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़े आग के कौर हो गए हैं। निनवे पर अधिकार करने के पश्चात शत्रुओं ने उसे भस्म कर दिया और उसकी भस्म राख वहां छोड़ दी। इसलिए ये भविष्यवाणी फिर से की गई है, रुकावट की छड़े आग के कौर हो गई है। अब देखिए आक्रमण की तैयारी। नाहुम अध्याय 3:14-19 तक, घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा, वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नाश हो जाएगी, वो येलेक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबा नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए, टिड्डी चट करके उड़ जाती है, तेरी मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीके ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। तेरा घाव ना भर सकेंगे, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। यह है परमेश्वर की अंतिम घोषणा, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, कोई उत्तर नहीं, समाधान नहीं, तुम बहुत दूर निकल गए हो। वो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है जब परमेश्वर मनुष्य के विषय में ये कहे कि उसकी स्थिति का कोई इलाज नहीं। वो कितनी दयनीय स्थिति थी जब यरमिया से कहा था, एप्रेम ने अपना संबंध मूर्तियों से स्थापित कर लिया है, उसे अकेला छोड़ दो। जब परमेश्वर ने कहा था, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना मत करो, यदि तुम करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जब परमेश्वर ये कहे कि स्थिति का समाधान नहीं है। अशूर इतिहास में अत्यंत ही क्रूर साम्राज्य था। अशूरी कामुक थे, वे अपने बंदियों को सताते और अपंग कर देते थे। कभी कभी वे अपने युद्ध बंदियों की जीभ निकाल लेते थे, उनके कान नाक और हाथ काट देते थे, उनकी आंखें फोड़ देते थे। उनकी क्रूरता उनके शत्रुओं में आतंक फैलाने का कार्य करती थी। इसमें वे सफल भी रहे। संसार अशूर को लोहा मानता था। उन्होंने संसार पर लगभग एक शताब्दी तक राज्य भी किया। वो भी इतनी क्रूरता और चरित्रहीनता से कि जब उसके पतन का समाचार मिला कि अब तो अशूर का विनाश हो गया, वो बस राख का ढेर ही रह गया है, तो संसार ने आनंद मनाया। निनवे की दुष्टता के कारण उसका पतन के लिए आंसू बहाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर की अनोखी भविष्यवाणी, जो भविष्यद्वक्ता नाहूम के माध्यम से अशूर के विरुद्ध तथा निनवे के विषय में दी गई, पूर्णता तथा यथार्थता में संपन्न हुई। नाहूम अशूर के विनाश को ऐसा उल्लेख कैसे कर पाए कि मदिरा के नशे में चूर अशूरियों के लिए ये विस्मयकारी था। वो ऐसा उल्लेख कैसे लिख सके कि नदी के द्वारा दीवार गिर जाएंगी। वो ऐसा उल्लेख कैसे लिख सका कि भस्म हो जाएगा और केवल राख ही राख रह जाएगा। जी हां मित्र, भविष्यद्वक्ता नाहूम को परमेश्वर निर्देश दे रहा था। जैसा कि परमेश्वर वचन की साक्षी है, परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा करते थे। नाहूम की यह भविष्यवाणी इस बात की साक्षी है कि बाइबल की रचना परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा के द्वारा नहीं हुई है। मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ विवरण इस रीति से पूर्णता तथा यथार्थता में कभी संपन्न नहीं हो सकता था। ये इस बात का अन्य प्रमाण है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। आइए हम परमेश्वर के समक्ष नमन करें। पिताजी, हम आपके वचन, आपकी विश्वास योग्यता और आपके न्याय करने में आपकी धार्मिकता के लिए आपके आभारी हैं। आपका न्याय जैसे अशूरियों के विरुद्ध भड़का जो आपके विरुद्ध खड़े हुए, हमें आभास है कि आपका न्याय वैसे ही एक दिन उन सब पर भड़केगा जो आपके विरुद्ध खड़े होने का साहस करेंगे। हम आभारी हैं पिताजी हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए और हमें अपने समीप खींचने के लिए। हम उनके प्रति आपके उपकार के लिए आभारी हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। विपत्ति के समय हमारी सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। हम वास्तव में आप पर निर्भर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी सहायता हमारे प्रभु एवं उद्धारक यीशु मसीह में ही उपलब्ध है। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं, आपका वचन हमारे हृदयों में संचित कीजिए। अपना उपकार हम पर करते रहिए कि हम आपके नाम में आपके उपकार की चर्चा जगत में करते चले जाएं और हम जगत में लोगों के मध्य शांति के शुभ समाचार के दूत बनकर जा सके, जिसका प्रबंध आपने मनुष्य की पाप क्षमा के लिए किया है। पिताजी, सहायता कीजिए कि हम आपके सत्य के विश्वास योग्य अग्रदूत बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मित्रवर, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, उनका सामर्थ हाथ आप पर सदैव बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको दृढ़ करे और पवित्र आत्मा से पूर्ण करे कि आप उनके प्रेम में जीवन व्यतीत कर सके, कि आप एक ऐसा उपकरण बने जिसका उपयोग परमेश्वर इस घृणापूर्ण तथा संदेही संसार में कर सके। आपका जीवन ऐसी ज्योति बने जो अंधकार में विपुलता से चमकती है और उनके लिए आशा लाती है जो अंधकार में जी रहे हैं।